بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ ناظرین السلام علیکم، میں علی باسری پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے این پی ٹی اور ایٹمی طاقتوں کا موقف اور ان کے دوہرے معیارات۔ اس موضوع پر گفتگو ہوگی معزز مہمانوں سے، مگر مختصر سے وقفے کے بعد۔ جی ناظرین، گزشتہ پیر کو اقوام متحدہ میں ترک جوہری اسلحہ کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں ایک بار پھر ناوابستہ تحریک کے رکن ملکوں کی نمائندگی میں اسلامی جمہوریہ ایران نے اس بات پر زور دیا کہ ایٹمی ہتھیاروں کو دنیا سے پاک کیا جانا چاہیے۔ یہ صرف اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز یا مطالبہ نہیں تھا، بلکہ چونکہ اس وقت ایران ناوابستہ تحریک کا چیئرمین ہے، اس لیے یہ 120 ملکوں کی آواز تھی۔ این پی ٹی وہ معاہدہ ہے جس میں ایٹمی ہتھیاروں کو نابود کیے جانے اور تباہ کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے کہ دنیا کے سبھی ملکوں کو، خاص طور پر جنہوں نے این پی ٹی پر سائن کر رکھا ہے، انہیں پرامن ایٹمی مقاصد کے لیے ایٹمی ٹیکنالوجی سے استفادہ کا حق حاصل ہے۔ لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ این پی ٹی عملی طور پر بے روح اور بے جان ہو کر رہ گیا ہے۔ بڑی طاقتیں، یعنی وہ طاقتیں جن کے پاس ایٹمی اسلحے موجود ہیں، وہ جب دوسرے ملکوں پر دباؤ ڈالنے کی بات آتی ہے تو این پی ٹی کا دم بھرتے ہیں، این پی ٹی کا نعرہ لگاتے ہیں اور این پی ٹی کے آڑ میں ان پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب خود اپنے ایٹمی گوداموں کی بات آتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے این پی ٹی نام کا معاہدہ بین الاقوامی سطح پر وجود ہی نہیں رکھتا۔ اور چنانچہ اسی بات کے پیش نظر گزشتہ مئی میں نیٹو نے جو اپنا نیا دفاعی ڈاکٹرین تیار کیا ہے، اس میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ اگر وقت ضرورت اس بات کا احساس کیا جائے کہ ہم ایٹمی ہتھیاروں کو استعمال کر سکتے ہیں تو ایٹمی ہتھیار استعمال کرنے میں کوئی مضائقہ بھی نہیں، یعنی ایک طرح سے نیٹو نے دنیا کے دیگر ملکوں پر یا ان کے خلاف ایٹمی ہتھیار استعمال کرنے کا اپنے کو حق دے دیا ہے۔ تو ایسے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر این پی ٹی کا مقصد کیا رہ جاتا ہے، اور پھر اقوام متحدہ جو این پی ٹی اور سی ٹی بی ٹی پر زور دیتی رہتی ہے، اس کا کیا فریضہ ہے اور اس کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے۔ چلتے ہیں اس وقت سیدھے اسلام آباد اسٹوڈیو، جہاں پر موجود ہیں اسٹریٹجک امور کے ماہر جناب صفدر رضا صاحب۔ السلام علیکم جناب۔
وعلیکم السلام۔
صدر صاحب، جو بھی ذرا سے بھی سیاسی شدھ بدھ رکھتا ہے اس کے لیے این پی ٹی اور سی ٹی بی ٹی بہت ہی آشنا نام ہے، لیکن یہ این پی ٹی عملی طور پر آپ کو کیسا دکھائی دیتا ہے اب موجودہ دور میں؟
میں یہ سمجھتا ہوں کہ 1968 میں بننے اور 1970 میں ریٹیفائی ہونے اور دنیا کے زیادہ تر ممالک، یعنی کہ 100 سے زائد ممالک پہ دستخطوں کے باوجود این پی ٹی نان پولیفریشن ٹریٹی کا جو یہ ایک عالمی معاہدہ ہے، یہ بالکل بکھر کے رہ گیا اور اس کی کوئی ویلیو نہیں رہی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حیرت ہے کہ جب یہ 1970 میں بنایا جا رہا تھا تو اس وقت 5 ملکوں نے اس پر دستخط کیے تھے۔ یہ نان پولیفریشن ٹریٹی کا مطلب یہی تھا کہ ہم اپنے ایٹمی اسلحے کے عدم پھیلاؤ کا معاہدہ ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ 1968 اور 1970 کے بعد امریکہ، جس کے پاس چند محدود ہتھیار تھے، اور سوویت یونین جو کہ اب روس بن چکا ہے، اور پھر برطانیہ ہے اور فرانس ہے اور چین ہے، انہوں نے اپنے ایٹمی اسلحے کو کتنا زیادہ بڑھایا، اور انہوں نے این پی ٹی کے ہونے کے باوجود ایٹمی اسلحے کو کتنا زیادہ بڑھایا، اور انہوں نے پھر نہ صرف یہ کہ ایٹمی اسلحے کو بڑھایا بلکہ اور ملکوں پر بھی انہوں نے نوازشات کیں، اور ان ملکوں کو ہم جانتے ہیں کہ وہ ساؤتھ افریقہ تھا جو کہ اس وقت گوری اقلیت کی حکومت وہاں پر تھی، اور وہ ظلم کرتے تھے وہاں کے حقیقی لوگوں پر، اور اسرائیل تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کے زیادہ تر ممالک نے اس پر دستخط کیے ہیں، لیکن میں حیرت اس وقت ہوتی ہے کہ جب این پی ٹی کے دستخط کرنے والے ممالک کے اوپر تو دباؤ اور پابندیاں اور ان سے پوچھ گچھ ہوتی ہے، اور این پی ٹی پر دستخط نہ کرنے والے ممالک جیسے پاکستان اور ہندوستان اور اسرائیل ہیں، وہ ایٹمی دھماکے بھی کر لیں، وہ ایٹمی اسلحے کے انبار بھی جمع کر لیں، لیں، ان پر کوئی دیکھ ریکھ نہیں اور اقوام متحدہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میں اس کو اس سادہ الفاظ میں بیان کرتا ہوں، ایک کلب جس کے ممبرز ہوتے ہیں، اپنے کلب کے ممبران کی اگر کوئی خلاف ورزی ہو جائے تو اس سے تو پوچھ گوچھ ہے، لیکن اگر کوئی اور اس کی خلاف ورزی کر دے، یعنی ایسے ہی ہے کہ جو کمزور اگر خلاف ورزی کر دے تو اس سے آپ پوچھیں گے، اور کمزور ایٹمی اسلحہ لہراتے ہوئے دنیا میں پھرتے رہیں گے تو آپ اس کے بارے میں کچھ نہیں کریں گے، بلکہ اس کے ساتھ تو آپ ایٹمی ٹیکنالوجی کے معاہدے کرتے پھرتے رہیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹیکنیکلی اور ڈپلومیسی کی زبان میں جب ہم کریں تو اقوام متحدہ دنیا میں اسلحے کی ایٹمی اسلحے کے عدم پھیلاؤ کرنے میں ناکام ہو چکا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاہدے کے باوجود دنیا میں نہ صرف یہ کہ ایٹمی اسلحے کی دوڑ جاری ہے، وہ بھرپور طریقے پر جاری ہے، اور اقوام متحدہ سلیکٹیو ہے اپنی اپروچ میں، اور کچھ ملکوں کو اقوام متحدہ روکتا ہے اور کچھ ملکوں کو اقوام متحدہ کچھ نہیں کہہ سکتا، ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم والی بات ہوتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس معاہدے کی روح سے، اقوام متحدہ کے اس معاہدے کی روح سے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا اصول ہے، اور بڑی طاقتیں اس معاہدے کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کر رہی ہیں، اور چھوٹے ممالک پر وکٹمائزیشن اور ان کا جو ممبرز کا حق ہے کہ وہ ایٹمی ٹیکنالوجی کو پرامن مقاصد جیسے زرعی مقاصد یا میڈیکل مقاصد ہیں ان سے روکنے کا یہ ایک طریقہ بن گیا ہے جو بہت ہی خطرناک ہے۔ یعنی اس سے ایٹمی اسلحہ تو بن سکتا ہے، لیکن ایٹم انسانیت خدمت میں استعمال کرنے کے لیے روڑے اٹکائے جا رہے ہیں۔
جی بہت شکریہ آپ کا۔ چلتے ہیں دہلی اسٹوڈیو، جہاں پر موجود ہیں ممتاز دانشور اور سیاسی امور کے ماہر ڈاکٹر قاسم رسول الیاس صاحب۔ السلام علیکم جناب قاسم رسول الیاس صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی پیر کو اقوام متحدہ کے جو ترک اسلحہ کمیشن ہے اس کے اجلاس میں ایٹمی ترک اسلحہ البتہ نوابستہ تحریک کے رکن ملکوں کی نمائندگی میں یہ تجویز پیش کی گئی کہ این پی ٹی پر بھرپور طریقے سے عمل درآمد کرانے، اور جو ایٹمی ہتھیاروں کا پھیلاؤ کا جو رجحان اس وقت ایٹمی طاقتوں میں پایا جا رہا ہے اس کو روکنے کے لیے عالمی سطح پر فوری اجلاس بلایا جائے۔ 120 ملکوں کا یہ مطالبہ ہے، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی اجلاس عنقریب ممکن ہو سکے گا کہ اس کا انعقاد کیا جائے اور اس میں اس بات پر زور دیا جائے کہ یہ جو ایٹمی ہتھیاروں کے پھیلاؤ کا رجحان ہے اسے روکا جائے؟
دیکھیے، 120 ملکوں کی نمائندگی کرتے ہوئے جب ایران کی طرف سے یہ بات پیش کی گئی کہ اس طرح کی کانفرنس بلائی جانی چاہیے، تو میرے خیال سے یہ خاصی اہمیت کی حامل بات ہے۔ 120 ملک جس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس چیز کو جو ہے آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ دیکھیے، دوسری بات یہ کہ جیسا کہ اس سے پہلے صدر رضا صاحب کے فرما رہے تھے کہ این پی ٹی کے سائن یعنی قائم ہونے کے بعد 1968 میں، اور اس پر 1970 میں اس پر ریٹیفیکیشن ہوا، سگنیچر ہوئے، اور جس میں امریکہ، رشیا، برطانیہ یہ سب اس کے سیکرٹریز ہیں، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے باوجود بھی 1992 تک تقریباً 1000 سے زائد ٹیسٹ جو ہے صرف واحد امریکہ نے کیے ہیں، اور اس کے باوجود بھی جس طرح کا پھیلا ہوا ہے کہ اس وقت دنیا میں تقریباً 19000 سے زائد نیوکلیئر یہ بم جو ہے دنیا میں موجود ہیں، جس میں صرف 5000 قریب امریکہ کے پاس موجود ہیں۔ تو بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ این پی ٹی موجود ہے، لیکن یہ کہ اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے، اور یہ بات اس بات سے بھی اتفاق کیا سکتا ہے کہ ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں کہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی کو جو ہے پیسفل پرپز کے لیے استعمال ہونا چاہیے اور اس کے لیے IAEA بھی قائم کی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر بعض ممالک اس کو پیسفل ذرائع کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ان پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ صاحب وہ لوگ جو ہیں پیسفل ذرائع کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہتے ہیں بلکہ وہ نیوکلیئر بمب بنا رہے ہیں، جیسا کہ ایران کے معاملے میں ہو رہا ہے۔ ہاں، یہی میں سیکرٹری ہونے کے باوجود بھی، NPT پہ کے سیکرٹری ہونے کے باوجود بھی ایران پر یہ اس قسم کے بے جا قسم کے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو NPT کے معاملے میں جو رویہ بڑی طاقتوں نے اختیار کر رکھا ہے، اور جس طرح کے وہ اس وقت میں ہتھیار، بڑے مہلک ہتھیار ان کے پاس موجود ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ، یہ اندیشہ بے بنیاد نہیں ہے۔ خود امریکہ یعنی واحد وہ ملک ہے جس نے کہ ایٹم بم کا، ہائیڈروجن بم کا استعمال کیا ہے جاپان کے خلاف میں، تو اس بات کا اندیشہ بہرحال ہر وقت موجود رہے گا کہ یہ بڑے ممالک، اور جیسا کہ ابھی آپ ناٹو کی بات کہہ رہے تھے، یہ بڑے ممالک اپنے مفاد کے لیے اس کا استعمال کر سکیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مطالبہ کیا گیا ہے ایران کی طرف سے اور 120 ممالک کی نمائندگی کرتے ہوئے کہ اس پر کانفرنس بلائی جانی چاہیے، اور یہ نہ صرف یہ کہ ترک اسلحہ کا معاہدہ ہو बल्कि इस बात की कोशिश हो कि इस वक्त जो मौजूदा दुनिया में जो हथियार मौजूद हैं, न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं, उनके उनको उनको तल्फ किए जाने का, उनको खत्म किए जाने के सिलसिले में भी पेशरफ होनी चाहिए।
जी बहुत शुक्रिया, मैं फिर हाजिर हूँगा। चलते हैं सीधे लाहौर, जहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त टेलीफोन लाइन पर पाकिस्तान के सीनियर और सरकर्दा तजयनगार और मुमताज़ दानिश्वर फारूक हसना साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब।
जी वालेकुम अस्सलाम।
फारूक हसना साहब, NPT में साफ लफ्ज़ों में ये कहा गया जो 1968 से 1970 के दरमियान जो माहिदा हुआ है, जिसमें बड़ी ताकतों ने साइन किए थे, ये कहा गया था कि एटमी हथियारों को बतदरीज ख़त्म किया जाएगा और अब तक उसका सफाया हो जाना चाहिए था, लेकिन देखा यह जा रहा है कि ना सिर्फ ये कि ख़त्म नहीं हुआ, अभी अमरीका और फ्रांस ने अपने एटमी हथियारों के गोदामों को जदीद बनाने के लिए, उनकी जदीदकारी के लिए अरबों डॉलर के बजट मुख्तस किए हैं, तो क्या ये NPT की धज्जियां उड़ाने के मुतरादिफ नहीं?
जी बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन इसके साथ ही मैं ये कहूंगा कि जब कोई भी मुआहदा किया जाता है, जब इतना पुराना मुआहदा हो जाए तो फिर उसको रिविजिट किया जाता है, यानी उसको फिर से देखा जाता है और उसमें जो नए हालात हैं, नए मामलात हैं, उसके मुताबिक उसको फिर से तहरीर किया जाता है। अब ये वक्त आ गया है, एक तो मुआहदा बजाते खुद जैसे आपने कहा उसकी तो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, दूसरों को मना करते हैं, चाहे वो पीसफुल पर्पसेस के भी क्यों ना कर रहा हो, खुद ये बनाते चले जाते हैं, अपना अपने हथियार खत्म करने को भी तैयार है, खत्म तो दूर की बात है, कम भी करने को तैयार नहीं, हालांकि इनके पास ओवर किल कैपेसिटी है, यानी इसकी इनको जरूरत भी नहीं है, तो अपने दिफा से कहीं ज्यादा आगे बढ़कर इन्होंने, तो उससे एक स्टेबिलिटी और एक टेंशन फैलती है। चलिए ये मैं कहने के बाद कहूंगा कि अब वक्त आ गया है कि इन सारे मामलात को सामने रखकर इस दुनिया में क्या हो रहा है, किस किस्म के हालात हैं, किस किस्म के मामलात हैं, क्योंकि दुनिया बहुत बदल गई है, और फिर से ये मुआहदा लिखा जाए और नए सिरे से लिखा जाए और उसको मुख्तलिफ तरीके से हकायक को सामने रख के लिखा जाए, और वो लिखा यही जाए कि जिन ममालिक के पास, पहले तो अगर आप खित्तों को भी ले लीजिए, अगर आप बैन अल-अक़वामी पूरी दुनिया को इस वक्त नहीं करना चाहते तो आप खित्तों को ले लें, आप कह सकते हैं मशरक़ वुस्ता न्यूक्लियर फ्री जोन हम बना देते हैं, इसी तरह लैटिन अमेरिका फ्री जोन बना देते हैं, साउथ एशिया फ्री जोन बना देते हैं, तो इसमें जो तमाम ममालिक हैं वो उसकी वो पाबंदी करेंगे एक बैन अल-अक़वामी जो छतरी है उसके नीचे और अक़वाम मुत्तहिदा के नीचे, तो इसमें जो जो ममालिक डिक्लेयर्ड नहीं है, जैसा इसराइल है, उसके पास सब सारी दुनिया जानती है कि उसके पास बमों का जखीरा है, लेकिन मजाल है कि उसके मतलब कोई बात की जाए या उसको वो उस बात को डिस्कस भी किया जाए या उसके ऊपर नुक्ताचीनी, तो बहुत दूर की बात है, तो इसी ये डबल स्टैंडर्ड जब ये करेंगे तो फिर उससे हर मुल्क जो है वो अपने तहफ्फुज़ के लिए या अपने आप को इस जो जदीद टेक्नोलॉजी है, चूंकि सिर्फ न्यूक्लियर बमों के लिए तो इस्तेमाल नहीं होता, ये पीसफुल पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल होता है, इससे बिजली बनाई जाती है, टिप में इसका इस्तेमाल होता है, तो इसलिए वहां पे भी एक लाइनें लगानी पड़ेंगी और वो लाइनें फिर सबके लिए होंगी, ये नहीं है कि एक मुल्क के लिए हो या दो के लिए हो तो बाकी के नहीं हो, मशरक़ वुस्ता की ये क्यों ना हालात टेंस हों जबकि आप डबल स्टैंडर्ड्स कर रहे हैं, और एक मुल्क ऐसा जो जाहिरियत में जिसने कमाल कर दिखाया है, जब से दूसरे जंग अजीम के बाद इस मुल्क ने इतनी जंगें लड़ी हैं, इतने लोगों को मारा है इसराइल ने और इतने जुल्म किए हैं, और वह दुनिया की कॉलोनाइज पावर है, कॉलोनाइजेशन खत्म हो गई, अंग्रेजों की नौ आबादियां थी, फ्रांस की थी, डच की थी, बहुत से ममालिक की थी, वो सब ने खत्म कर दी है, ये वाहिद मुल्क है जो नौ आबादी अभी वेस्ट बैंक पे और गाजा पे ये अपनी कॉलोनीज बना के बैठा हुआ है, तो दूसरी बात यह है कि ये खुद अब बड़ी ताकतों को ले लीजिए, इनको मिसाल कायम करनी चाहिए, ये मिसाल, और जैसे मैंने पहले कहा इनके पास ओवर किल कैपेसिटी है, ये नहीं है कि अगर वो कुछ कम करेंगे तो उनका जो तहफ्फुज़ है वो खत्म हो जाएगा उनके पास, और दूसरी बात ये बताइए कि दूसरी जंग अजीम में के बाद जब से एटम बम इस्तेमाल हुआ था जापान, उसके बाद कौन सी लड़ाई है जिसमें एटम के बम के नजदीक भी गए हैं, तमाम कन्वेंशनल लड़ाइयां थी, 50,000 अमेरिकन मारे गए वियतनाम में, इराक में बेशुमार मारे गए, अफगानिस्तान में मारे जाने हैं, तो कहाँ एटम की इनको जरूरत पड़ी, क्योंकि वो इतनी खतरनाक चीज है कि वो आप कर ही नहीं सकते, तो कन्वेंशनल वॉर ही होती नहीं, सारी कन्वेंशनल वॉर के साथ ही जंगें लड़ेंगी, तो फिर ये एटम के हथियार जमा करना इनका क्या मकसद है, तो इसलिए लेकिन क्योंकि वो उन्होंने किया हुआ है उसको वो कम करने के तैयार नहीं है, जैसे आपने बजा कहा, बल्कि उसको मजीद जदीद बनाना और खतरनाक बनाना, तो उसकी तरफ चल पड़े हैं, तो ये दूसरों के लिए क्या मिसाल कायम करेंगे? दूसरों के लिए मिसाल आप तब कायम करते हैं जब आप खुद एक आगे बढ़ के करते हैं। जैसे मैं बार बार इस बात को कहूंगा, पहले मैंने कहा कि इनके तहफ़ को कोई खतरा नहीं होगा, अगर ये एक चौथाई भी रख लें एटमी हथियार तो फिर भी इनके तहफ़ को खतरा नहीं होगा, एक दूसरे से भी नहीं होगा, क्योंकि ओवरकिल कैपेसिटी है सबके पास। लेकिन ये मिसाल कायम करें ना पहले तो, और फिर ये ताकि कहने वाले बने दूसरी दुनिया को और दूसरे ममालिक को कि देखिए हमने तो ये कर दिया है, तो आप भी यहाँ पे लाइन ड्रा करें। और यहाँ पे फिर डबल स्टैंडर्ड नहीं होंगे कि आप ईरान को, पाकिस्तान को, किसी और को तो दबा के रखें और खुद आप इसराइल को आपने खुली छुट्टी दी हुई है कि वो जो मर्जी वो बनाता फिरे और केमिकल वेपन बनाता फिरे, इस्तेमाल भी किया।
बहुत शुक्रिया आपका, मैं फिर हाजिर हूँ फारूक हसन साहब, बहुत शुक्रिया। सफदर अजहर साहब, जैसा कि अभी फारूक हसना साहब ने कहा कि ज़ाहिर है कि 1970 का माहदा है और इस पर अब नज़र सानी का वक्त आ गया है, और ये एक हकीकत है, दुनिया के बेशतर ममालिक बार बार इसका मुतालबा भी कर रहे हैं कि NPT नज़र सानी कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की जानी चाहिए, लेकिन देखा जाता है कि जब भी इस तरह की बात होती है तो मामूली सतह पर, शायद ज़ैली सतह पर कई कॉन्फ्रेंस इस तरह की हो भी, लेकिन आलमी सतह पर अगर इस तरह की कॉन्फ्रेंस का मुतालबा किया जाता है तो अमरीका और उसके इत्यादि इसकी सख्त मुखालफत करते हैं। क्यों आपके ख्याल में ये इसकी मुखालफत करते हैं?
मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल डॉक्टर हसनात ने दुरुस्त कहा कि जितने भी माहदे हैं, UNCRC जो UN कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन है, सीडा है, और बेशुमार माहदे हैं, उनके प्रोटोकॉल्स हैं, ऑप्शनल प्रोटोकॉल्स हैं, जो कि वो एक माहदा हो जाता है, फिर उसमें अमेंडमेंट होती है, नई चीज़ें आती हैं, सब कुछ तरोताज़ा होता रहता है, लेकिन वाहिद NPT है कि जिसकी न सिर्फ ये कि खिलाफ वर्जी पर नोटिस नहीं लिया जाता, बल्कि वो माहदा वैसे का वैसा जामिद है और उस माहदे की वसी पैमाने पर खिलाफ वर्जी हुई है। अभी जो आपने अपनी बात के इब्तिदा में बात की थी कि नाटो ने कहा है कि अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो हम एटमी हथियारों का इस्तेमाल करेंगे, मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है जो कि एटमी अदम फैलाव के ख़िलाफ़, उसकी स्पिरिट के ख़िलाफ़ है और UN चार्टर के ख़िलाफ़ है, और वो यूरोप जो कि दुनिया भर में सिविल लिबर्टीज़ का और इंसानी हकूक़ का चैम्पियन बनता है, क्या उसको ये कहना जेब देता है? और क्या दुनिया भर के गरीब मुल्क ये बात कह सकते हैं कि नाटो ने ये कहकर अक़्वामे मुत्तहिदा की तौहीन की है और अक़्वामे मुत्तहिदा का जो इंसानी हकूक़ का चार्टर है उसके खिलाफ वर्जी की है कि एक मुल्कों का ग्रोह जो कि फौजी ग्रोह है, नाटो है, वो ये कह रहा है कि अगर हमें एटमी हथियारों को इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ी तो हम ये बात करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि ये इंतहाई ख़तरनाक बात की है, और न सिर्फ ये कि ये नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के रूह के ख़िलाफ़ है, बल्कि ये यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स के चार्टर के और अक़्वामे मुत्तहिदा के चार्टर के ख़िलाफ़ है। मैं ये समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि जैसा कि ईरान ने बात की और उससे दो महीने पहले जब नॉन अलाइन मूवमेंट का इजलास हुआ था तो उसकी करारदाद में भी बात हुई थी, और सैयद अली खामनाई ने भी, रहबर मुअज़्ज़म ने ये बात जोर देकर कही थी कि दुनिया भर को एटमी असले से पाक दुनिया करार दिया जाए, बिलखसूस उन्होंने मशरक़ वस्ती का जिक्र किया। तो मैं ये समझता हूँ कि जब इस तरह की सूरत हाल हो कि कुछ मुल्क जिनमें से ज़्यादातर नावाबस्ता और गरीब मुल्क हों, अगर वो कहते हैं कि दुनिया को एटमी असले से पाक करार दिया जाए और फिर दुनिया के ऐसे ममालिक जो कि एटमी असले से लेस हों वो उस पर वो दुनिया की बात न सुने, तो मैं ये समझता हूँ कि कम से कम दुनिया को उन मुल्कों को ऐसा मुल्क ज़रूर कहना चाहिए कि जो दुनिया के अमन के ख़िलाफ़ ख़तरा हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इन चंद गिने चुने ममालिक को पहचाना जाए, इनको आइडेंटिफाई किया जाए और इनको आलमी अमन के लिए ख़तरा करार दिया जाए और आलमी अमन और एटमी फैलाव का मुजरिम करार दिया जाना चाहिए।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर कासिम रसूल इलियास साहब, मैं आपसे यहाँ ये पूछना चाहूँगा कि जब भी आलमी माहिदों की बात आती है तो उनकी पासदारी और उनके दिफा में सबसे आगे मगरिब वाले आते हैं, यूरोपी और अमरीकी आगे आते हैं, खा वो NPT हो, CTBT हो या अक़्वामे मुत्तहिदा की कोई करारदाद हो, लेकिन इसी NPT की मौजूदगी के बावजूद मई 2012 में नेटो में यह बात कही जाती है और ये दस्तावेज़ मंजूर की जाती है कि ज़रूरत पड़ने पर दिफा के लिए हम एटमी हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नेटो का मौक़िफ है जो NPT या आलमी माहिदों का सबसे बड़ा मुदाफ़े है, और दूसरी तरफ ईरान की आला क़यादत ये कहती है कि एटमी हथियारों का इस्तेमाल और उसका बनाना हराम है। तो आप बताएं कि NPT के ताल्लुक से मुखलिस कौन है?
नहीं, ये बात बहुत वाजह है कि एनपीटी के सिलसिले में जो कुछ भी अमेरिका और मगरबी ममालिक का रवैया है वो सिर्फ लिप सर्विस तक महदूद है कि जबानी जमा खर्च करते रहें, लेकिन ये अमलन जो है उसके खिलाफ वर्जियां वो करते रहे हैं। और मसला सिर्फ इस बात का है कि देखिए, जहां तक इखलास का मामला है, ये बात तो मुसलमानों के सिलसिले में बहुत वाजह है और इस्लाम इसकी यानी इस तरह की तालीमात देता है कि साहब आप जो है लोगों पर जारियत के लिए, जुल्म ढाने के लिए हथियारों का इस्तेमाल करें, अपनी ताकत का इस्तेमाल करें, इसकी इजाजत नहीं दी गई है। और यहां तक कहा गया है कि अगर आप किसी शख्स का बेजा कत्ल करते हैं, नाहक कत्ल करते हैं, तो गोया आप पूरी इंसानियत को कत्ल करते हैं। तो जो तालीम इस्लाम देता है उसके मानने वालों से कभी यह तवक्को नहीं की जा सकती कि वो इतनी हिलाकत खेज चीजें अपने पास रखें और पूरी दुनिया को तबाह करने की कोशिश करें। आपको इल्म में ये बात मैं लाना चाहता हूं कि जब 1998 में हिंदुस्तान ने 5 बम धमाके किए थे और उसके जवाब में पाकिस्तान ने 7 बम धमाके किए थे, तो हिंदुस्तान की एक बहुत ही दानिश्वर खातून जो अच्छी राइटर हैं, अरुंधति रॉय, उन्होंने एक बहुत ही उम्दा मजमून लिखा था यहाँ के एक बड़े मैगजीन में और उसका उनवान था एंड ऑफ इमेजिनेशन। और उसका अख्ताम इस तरह हुआ था कि अल्लाह ताला ने इंतहाई खूबसूरत दुनिया बनाई है जो कई सौ सालों में, सैकड़ों बल्कि लाखों सालों में बनकर तैयार हुई है, उस दुनिया को इंसान जो है चंद सेकंड में बर्बाद कर देना चाहता है, तो गोया इंसान खुदा के मुकाबले में खड़ा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो रऊनत है, ये जो अपमैनशिप है, ये जो इस्तेमार है, ये हमेशा इस तरह के हथियार अपने दिफा के लिए, अपने जारहियत के लिए, अपने जारहाना अजायम के लिए अपने पास रखना चाहता है। और ये हवा खड़ा करता है कि दुनिया के दूसरे लोग जो है WMD या मुहल्लिक हथियार अपने पास रखते हैं और उसको जवाब बना के उन पर हमला करता है। तो जो उसके इस्तेमारी अजायम है, जाहिर है कि उस इस्तेमारी अजायम के तकमील के लिए इस किस्म की नुमाइश या इस किस्म की कोशिशें जो है उसकी तरफ से जारी हैं बराबर। और ये जो बात हमारे यानी मुस्लिम मुल्कों की तरफ से आ रही है, ये बात इस तनाजुर में देखी जानी चाहिए कि इस वक्त में दहशतगर्दी के उनवान से जिस तरह अमरीका और मगरबी ताकतों ने इस्लाम और मुसलमानों को निशाने पर ले रखा है, उससे इस बात का अंदेशा बेबुनियाद नहीं है कि मुस्तकबिल में कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा फिर से ये जो न्यूक्लियर हथियार है इसका इस्तेमाल किया जाए इस्लाम के और मुसलमानों के खिलाफ में। ये अंदेशा बेबुनियाद नहीं है, जिस तरह की ये ताकतें अमरीका 1945 में जापान के खिलाफ इसका इस्तेमाल कर चुका है, उन ताकतों से ये बईद नहीं है कि वो दुनिया में अपनी इजारादारी कायम करने के लिए, चौधराहत कायम करने के लिए एक बार फिर इस रास्ते की तरफ चल पड़े।
जी सफदर रजा साहब, आप देखें कि अभी जो आपने इशारा किया नवाबस्ता तहरीक का इजलास हुआ था, उसके ताल्लुक से कि उसमें ये बात जोर देकर कही गई थी कि NPT पर पूरी तरीके से अमल दरामद होना चाहिए। पूरे तरीके से अमल दरामद का मतलब ये है कि एटमी हथियारों को नाबूद किया जाए, साथ ही जो ममालिक उसके मेंबर हैं उनको अपनी मुल्की तरक्की व पेशा और पुरान मकासद के लिए एटमी टेक्नोलॉजी से इस्तेफादे का हक हासिल होना चाहिए। तो मगरबी ममालिक या हुकूमतें एक तरफ तो ना सिर्फ ये कि एटमी हथियार तबाह नहीं करें बल्कि उसको जदीद कारी में भी उसकी मसरूफ़ हैं, और दूसरी तरफ से जो ममालिक NPT के रुकन हैं वो अगर पुरान मकासद के लिए एटमी टेक्नोलॉजी हासिल करना चाहते हैं तो उनको घेरा जा रहा है, उन पर अरस हयात तंग करने की कोशिश की जा रही है। तो ये दोहरे तरीके से दो तरफ से NPT की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, तो ऐसे में अक्वामे मुत्तहिदा का क्या फरीजा और इसकी क्या जिम्मेदारी बनती है?
बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि एक तरफ तो ये है कि ये मुहिदा एटमी असलहे के अदम फैलाव का मुहिदा है, ये इंसानियत की खिदमत एटम की टेक्नोलॉजी के ज़रिए रोकने का मुहिदा नहीं है। अगर कुछ मुल्क ऐसा करते हैं तो ये इस मुहिदे की रूह के ख़िलाफ़ है, यानी वो मुल्क जिनके पास एटमी असला है ऐसे मुल्कों को रोकने की कोशिश करते हैं जो एटमी असला बनाने को हराम कर चुके हैं, जो एटमी असला बनाने को इंसानियत के ख़िलाफ़ समझते हैं, और उनके आला तरीन मजहबी क़यादत ने एक मुस्लिम एडिक्ट या एक फतवा दिया हुआ है कि एटमी असला बनाना हराम है। वो लोग जिनके पास एटमी असले के अंबार हैं वो ऐसे मुल्कों को एटमी टेक्नोलॉजी जो कि वो ज़िरात के लिए, बिजली के लिए और तिब में इस्तेमाल करने के लिए चाहते हैं, तो एटमी असले का पुरअमन इस्तेमाल बनाने पर तो उनको इतनी सीख पाएँ, लेकिन ख़ुद वो एटमी असला अगर बनाएं ایٹمی ٹیکنالوجی بنانے پر اور ایٹمی ٹیکنالوجی کے استعمال پر ان کو تو شدید اعتراضات ہیں، لیکن ایٹمی اسلحہ کی ترقی کے لیے اور ایٹمی اسلحہ بنانے کے لیے اور اس کے استعمال کے لیے وہ ہمہ وقت کمر بستہ ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنو کا نام خرد رکھ دیا، جنو کا خرد جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، دنیا میں اس سے زیادہ تضاد کیا ہوگا کہ آپ کے پاس ایٹمی اسلحہ ہے، آپ ایٹمی اسلحہ ایک دفعہ استعمال کر چکے ہیں، آپ ایٹمی اسلحہ استعمال کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں ایسے ملکوں کے خلاف جو ایٹمی اسلحہ کو حرام قرار دیتے ہیں، جو ایٹمی اسلحہ ان کے پاس موجود ہی نہیں ہے اور وہ صرف ایٹمی ٹیکنالوجی کو پرامن مقاصد کے استعمال کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کو اس تضاد، کھلے تضاد اور بھرپور ظلم اور دنیا میں طاقت کے غرور میں مبتلا بعض لوگوں کا کمزور ملکوں کو دمانے کا ایک حربہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ این پی ٹی کمزور ملکوں کو دبانے کا حربہ ہے جو کہ طاقتور ملکوں نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حربہ اور ایٹمی اسلحے کے عدم پھیلاؤ کا یہ معاہدہ شاید ایٹمی اسلحے سے بھی زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ یہ ظلم کی بنیاد رکھ رہا ہے۔
بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق خزانہ صاحب، معاف کیجیے گا کافی دیر تک آپ منتظر ہیں۔ آپ دیکھیں کہ بات یہ ہو رہی کہ گزشتہ پیر کو اقوام متحدہ کا جو ترک اسلحہ، ایٹمی ترک اسلحہ کمیشن ہے، اس کا اجلاس ہوا تھا اور اس میں 120 ممالک نے، یعنی جو نان مومنٹ الائنس یعنی نوابستہ تحریک کے جو رکن ممالک ہیں، انہوں نے اس بات کا مطالبہ کیا، اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ این پی ٹی کو عملی بنایا جائے، اور ان کا سب کا مطالبہ یہ ہے کہ وہ ممالک جنہوں نے این پی ٹی پر دستخط نہیں کیے اور ان کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں، من جملہ غاصب صہیونی ریاست، اس کو بھی اس میں شامل کیا جائے۔ تو کیا اقوام متحدہ میں اتنا دم خم نہیں کہ وہ 120 ملکوں کی آواز اور مطالبہ سننے کے بعد بھی اسرائیل کو اس معاہدے میں شامل کر سکے؟
اس میں ان کا امریکنوں کا تو بالکل ایک آبسیشن ہے اسرائیل کے لیے، اور وہ کئی دفعہ تو یہ لگتا ہے کہ ساری خارجہ پالیسی امریکہ کی ایک چھوٹا سا ملک ہے اس کے لیے بنائی جا رہی ہے، یا وہ ملک جو ہے ان کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے اپنی خارجہ پالیسی چلانے کو، کیونکہ بہت سے لوگ وہاں پسند بھی نہیں اس چیز کو کرتے۔ اس میں دیکھیے ایک دو اور چیزیں بھی ہیں، این پی ٹی کو اگر ہم دیکھیں تو جیسے آپ نے کہا کہ اس کے ممبر نہیں ہیں، سگنیچرز نہیں کیے، لیکن ایٹمی وہ طاقت بن کے، اس میں ہندوستان بھی ہے، پاکستان بھی ہے، تو لیکن بات یہ ہے کہ اس میں ایک اور کلاس بھی ہے این پی ٹی میں، وہ ہے کہ ممالک اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ تو اس لیے اگر انہوں نے یہی رویہ اپنا رکھا اور اس میں جس میں انصاف کا کوئی عنصر نظر نہیں آیا، اور ملکوں کو اگر انہیں بلی کرنا شروع کیا اور ان کو دبایا، اگر طاقت کے ذریعے خاص طور پہ دبایا، تو پھر ان کے پاس تو آپشن ہے کہ یہ چھوڑ دیں، اور یہ این پی ٹی سے جب نکل جائیں تو یہ کیا کر لیں گے، اس کا وہ جو مرضی پھر کریں، وہ پھر انسپیکٹرز نہ آ سکیں گے، نہ اس کو اوور سائٹ ہو سکے گی۔ اب ایران کا دیکھ لیجیے، ایٹمی پروگرام جو ہے وہ کھلا ہوا ہے، وہ اس پہ انسپیکٹرز وہاں پہ موجود ہیں، وہ گائے بکائے آتے رہتے ہیں، وہ باقاعدہ اس کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں، آئی اے ای اے کے نیچے وہ آ رہا ہے۔ تو ایک دفعہ جب آپ اس پر دباؤ کریں گے بہت زیادہ، اگر انہوں نے حماقت کی زور استعمال کرنے کی، اپنا جو پراکسی ان کی ہے مڈل ایسٹ میں جس کو اسرائیل کہتے ہیں، تو پھر ایران وہاں سے نکل کے این پی ٹی سے اور وہاں انسپیکٹرز کو بند کر دے اور آئی اے ای اے کے اس کو نہیں دیکھ سکے گا، تو پھر یہ کیا کریں گے؟ اس لیے یہ کیونکہ اپنے مفاد میں بھی ہے کہ یہ این پی ٹی کو اس قسم کا معاہدہ رہنے دیں جس میں ممالک اس میں شامل ہوں، اپنی خوشی سے شامل ہوں اور اس میں رہیں۔ اور لیکن بار بار یہ بات ہو رہی ہے، جہاں سے میرے بھائی جو ہیں دوسرے وہ بھی کر رہے ہیں، میں بھی اس پہ زور دوں گا، لیکن اس کے لیے ان کو خود مثال قائم کرنی ہوگی اور ان کو ڈبل اسٹینڈرڈ ہٹانے ہوں گے، نہیں تو یہ این پی ٹی کی دھجیاں اکھیڑ دیں گے اور پھر فری فار آل کا ایک ہو جائے گا، جو ان کے مفاد میں بھی نہیں ہوگا کہ جو بڑی طاقتیں ہیں جس وقت جو مونوپلی اسلحے کی بنائی ہوئی ہے۔ اس لیے ان کے اپنے مفاد میں دنیا کے امن کے لیے اور دنیا کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ این پی ٹی کو نہ صرف مؤثر بنایا جائے بلکہ اس میں نظر آئے، ٹرانسپیرنسی ہو، اس میں نظر آئے کہ یکساں سلوک ہو رہا ہے تمام ممالک کے ساتھ، اور جو اس کی وائلیشن کرتا ہے اس کو یہ اپنے فیورٹس جو ہیں ان کو تو کچھ نہ کہا جائے، دوسروں کو کہا جائے، یہ پالیسی ہٹانی ہوگی
جی،
تبھی یہ معاہدہ آگے چلے گا
جی۔ फारूक हसन साहब, मैं अगला सवाल भी आप ही से करना चाहूँगा कि जो एटमी हथियार रखने वाले बाज़ ममालिक, उनका दावा यह है कि हमने कुछ एटमी हथियार तबाह कर दिए हैं, और उस बहाने से वो इस बात का दावा करते हैं कि हम एनपीटी पर कारबंद हैं, और साथ ही वही ममालिक अपने एटमी हथियारों के गोदामों को जदीद और मॉडर्न बनाने के लिए अरबों डॉलर बजट मुख्तस करते हैं। तो क्या ये समझा जाए कि वो एनपीटी के पाबंद हैं इस सूरत में, जबकि जदीद बनाने के लिए एटमी हथियारों के गोदाम को अरबों डॉलर के बजट मुख्तस करते हों?
नहीं, ऐसे नहीं हुआ। असल में ये हुआ था जब सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ 1990 में, तो उसमें उसके बाद फिर इन्होंने ये बात ये चली थी कि सोवियत यूनियन को भी इनसे बातचीत शुरू हुई थी, जो नया रशिया आया था वजूद में रूस, कि हम अपना असला जो है वो कम करते हैं ये, लेकिन ये वो बात आगे चली नहीं बहुत। और ये लेकिन ये कहना कि हमने वो खत्म कर दिए, किस प्रोपोर्शन के साथ खत्म किया था, तो ये है ना जी, अगर आपके पास 10,000 हैं और आपने 2,000 खत्म कर दिए हैं तो बात तो वहीं की वहीं हो गई। या तो आप कहें कि हमारे पास 10,000 थे, हमने 2,000 हमारे पास रह गए हैं, तो किस प्रोपोर्शन से वो बात कर रहे हैं, और वो 2,000 ये फिर जस्टिफाई करें कि ये हमारे तहफ़ के लिए हैं, और फिर हम इसको उसका जाया करना एक बड़ा मुश्किल प्रोसीजर होता है। न्यूक्लियर वो रहती है हजारों साल, उसकी जो तबकारी है, तो वो हम प्रोसीजर करेंगे, उसमें देर लगती है, लेकिन कहीं से शुरुआत तो करें, कोई ऐसी बात करें जो जिससे दूसरों को ये एक कॉन्फिडेंस मिले, उनको एतमाद मिले कि हाँ जी ये ईमानदारी के साथ और डबल स्टैंडर्ड्स के साथ नहीं, बल्कि ईमानदारी के साथ और शिक्षा शुरू करते हुए ये कार्रवाई कर रहे हैं, तो फिर तो लोग इनकी बात मानेंगे भी, दूसरे ममालिक, लेकिन इस तरह नहीं कोई इनकी बात मानेगा, ना ही इनके ऊपर कोई एतमाद करेगा।
जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने कीमती वक्त हमें इनायत किया, हम आपके शुक्रगुजार हैं। और नाज़रीन, हिंदुस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी के कौमी सिक्योरिटी शमीम फैजी साहब ने इसी मौजू पर अपने ख्यालात कुछ इन अल्फाज में बयान किए हैं।
देखिए, एटमी हथियारों का मामला जब अमेरिका ने पहली मर्तबा दूसरी जंग अजीम के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी करके किया था, उस वक्त से ही एक पेचीदा मसला बना हुआ है, और जब अमेरिका के अलावा दूसरी ताकतों ने भी एटमी हथियार बनाए, तब अमेरिका को एहसास हुआ कि उसे चैलेंज करने वाली ताकतें पैदा होगी। उसने शुरू से ही ये कहना शुरू किया कि अब एटमी हथियारों का फैलाव या उनकी तौसी को रोकना चाहिए। उसका कभी यह हदफ नहीं रहा कि एटमी हथियारों को ख़त्म कर दिया जाए। इसलिए सोवियत यूनियन के ज़माने में जो माहदे किए गए वो बतदरीज एटमी कुवत को ख़त्म करने के लिए बाहमी माहदे थे, लेकिन आलमी सतह पर एनपीटी पर दस्तखत करने के लिए मुल्कों को इसलिए मजबूर किया जा रहा था कि वो एटमी कुवत को, न्यूक्लियाई कुवत को अपने मुल्क में तरक्की ना दे सकें, और इसके लिए उनसे कहा जाता था कि वो एनपीटी पे दस्तखत करें और ये वादा करें कि अगर वो न्यूक्लियाई कुवत बनते भी हैं तो वो सिर्फ तरक्याती मकासद के लिए होगी, गैर मसल्ला अगराज के लिए इस कुवत का इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि एटमी हथियारों से दुनिया को पाक कर देना चाहिए। जब भी अमेरिका की तरफ से तजवीज़ आई वो यही आई कि जिन ममालिक के पास एटमी हथियार नहीं हैं उनको ना बनाने दिया जाए, लेकिन जिनके पास हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए, इस पर कभी नहीं हुआ। हमारे मुल्क में राजीव गांधी एक नौजवान वज़ीर आज़म थे, और उन्होंने अक़वाम मुत्तहदा में तजवीज़ रखी थी कि एटमी ख़तरे से बचने का बेहतरीन तरीका ये है कि जिन मुल्कों के पास एटमी हथियार हैं वो ख़त्म कर दिए जाए, दुनिया को एटमी हथियारों से पाक किया जाए। वैसे तो सब ने उस पर तालियां बजाई, लेकिन किया किसी ने भी नहीं, बल्कि अब एटमी हथियार सिर्फ उनके असलाह खानों तक नहीं बल्कि खला तक वो ले जा रहे हैं, इसलिए उनका मकसद तो एटमी हथियारों से पाक करना नहीं है। खुशी की बात है कि इस बार ईरान ने जो तजवीज़ रखी उसमें एटमी हथियारों पर रोक का सवाल नहीं है, बल्कि दुनिया को एटमी हथियारों से पाक करने की वैसी ही तजवीज़ रखी है जैसे किसी ज़माने में राजीव गांधी ने की थी, इसलिए इसका खैर मकदम किया जाना चाहिए और ज़ोर इस बात पर दिया जाना चाहिए कि हर मुल्क को न्यूक्लियाई ताकत अपने तरक्याती अखराज के लिए इस्तेमाल करने का हक़ है और किसी और मुल्क को न्यूक्लियाई कुव्वत बनने से रोकने से पहले जो ममालिक न्यूक्लियाई कुव्वत बन चुके हैं उनकी न्यूक्लियाई ताकत को हथियारों को ख़त्म करना ज़रूरी है। जो मौलाना तौर पर एलानिया तौर पर ताकतवर हैं जिनके पास हथियार हैं उनकी भी, और जो गैर मौलाना तौर पर एटमी हथियारों के मालिक हैं उनके भी हथियारों को ख़त्म किया जाना चाहिए। और इस ज़मरे में सबसे अहम मुल्क इसराइल है जिसके पास गैर मौलाना तौर पर एटमी हथियार मौजूद हैं। तो एटमी हथियारों से दुनिया को पाक करने का मकसद पहले से मौजूद एटमी हथियारों को ख़त्म करना और नए हथियारों की प्रोडक्शन पर पूरी तरह से रोक लगाना है।
जी बहुत शुक्रिया आपका शमी फजी साहब। अब चलते हैं एक बार फिर दिल्ली स्टूडियो जहाँ पर डॉक्टर कासिम रसूल इलिया साहब हैं। डॉक्टर साहब मैं आपसे यहाँ पर ये पूछना चाहूँगा कि जब बान की मून यहाँ तेहरान आए थे पिछले 29-30 अगस्त को और रहबर इनकलाब इस्लामी से उनकी मुलाकात हुई थी, मिले थे, तो रहबर ने यही उनसे फरमाया था कि इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा की जो अहम तरीन जिम्मेदारियाँ उनमें से एक ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा कोशिश इस बात की करे कि दुनिया को एटमी हथियारों से पाक किया जाए। अब 120 ममालिक का मुतालबा है और इसके अलावा भी दुनिया के दीगर ममालिक हैं जो ये मुतालबा कर रहे हैं, तो क्या ये 2-3 ममालिक अपनी हठधर्मी पर कायम रह सकते हैं अगर दुनिया के बेशतर ममालिक 90% से ज़ायद ममालिक इस बात का तहिया कर लें और अक़वाम मुत्तहिदा भी उनका साथ दें?
नहीं, मेरे ख्याल से ये अगर ये तहरीक जो है एक आम तहरीक बन जाती है, ज़ाहिर है कि 120 ममालिक का मुतालबा जो है एक माना रखता है और अगर दूसरे ममालिक भी जो नामवस्त तहरीक में शामिल नहीं है इस तहरीक के साथ जुड़ जाते हैं तो ज़ाहिर है कि यह दबाव अक़वाम मुत्तहिदा पर एक बहुत ही अहम दबाव होगा और अक़वाम मुत्तहिदा को जो है इससे सरफ नज़र करने की पोजीशन में अक़वाम मुत्तहिदा नहीं होगी। इसी के साथ साथ हम ये महसूस करते हैं कि मसला यानी यहाँ तक मुल्कों का दबाव है ये तो अपनी जगह कायम है और ये रहना चाहिए। इसके साथ साथ एक आजकल पूरी दुनिया के अंदर एक सिविल सोसाइटी मूवमेंट भी चल रही है और वो यही है कि न्यूक्लियर फ्री जोन बनना चाहिए। जिस तरह एनवायरमेंट के सिलसिले में जो है सिविल सोसाइटी मुतारिक है इस तरह उतनी ताकत और उतनी कुव्वत से ना सही, लेकिन बहरहाल ये मूवमेंट पूरी दुनिया में शुरू हो चुकी है कि दुनिया को जो है न्यूक्लियर असलाह से जो है पाक किया जाना चाहिए। देखिए मसला इस बात का है कि अगर कोई मुल्क जारहाना तौर पर अगर उन असलाह का इस्तेमाल ना करें तब भी इस बात का अंदेशा हमेशा रहता है कि कोई एक्सीडेंट हो जाए और ये जो ताकत है ये न्यूक्लियर पावर है ये न्यूक्लियर असलाह है ये खुद उस मुल्क के लिए जिस मुल्क में ये जिसका जखीरा मौजूद है उस मुल्क के लिए भी ये नुकसानदा और हलाकत खेज साबित हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो मुतालबा है ये पूरी इंसानियत की फलाह उसके अमन उसकी बर्बादी को रोकने का मुतालबा है और मैं समझता हूँ इस बात को जो है बहुत आसानी से यानी तस्लीम किया जाना चाहिए और अक़वाम को जो है इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि जो मालिक इसमें इसके लिए तैयार नहीं है उनको इस दायरे में शामिल करें और उन पर दबाव बनाएं कि साहब ये जो तर्क असलाह वाली बात है इस बात को मान लिया जाना चाहिए।
जी सदर साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अक़वाम मुत्तहिदा क्यों अब तक सहयोगी हुकूमत या इसराइली हुकूमत को NPT में शामिल करने में नाकाम रही और क्यों वो सीना ठोंक कर ये कहती है कि हम अपने एटमी तंसीबात के दरवाजे IAEA के मुआयनाकारों के लिए नहीं खुलेंगे और अक़वाम मुत्तहिदा खामोश रहती?
मैं समझता हूँ कि न सिर्फ ये कि एटमी असले के अदम फैलाव के बारे में बल्कि दुनिया के जितने भी सिविलाइज्ड कवानीन हैं उन सब के बारे में सहयोगी हुकूमत का रवैया अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी राय आमा को जूते की नोक पर रखने के मुतरादिफ़ है। मैं ये समझता हूँ कि अपार्टेड वाल है, मुहाजरीन को महबूस कर देना है, दूसरों की ज़मीनों पर जबरी कब्ज़ा है जिसके ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल बेशुमार करारदादें पास कर चुकी हैं और उसके अलावा ये बड़ी तशवीशनाक बात है कि डिक्लेयर्ड स्टेट्स जिनके पास जिन्होंने ऐलान किया है कि हमारे पास एटमी असलाह है वो आज तक 7 स्टेट्स हैं कि उनके पास एटमी असला है, उनके अलावा एक ऐसी स्टेट है जिसके पास सबको मालूम है कि उनके पास एटमी असला है लेकिन वो आज तक किसी भी गिरफ्त में नहीं आया है। तो मैं ये समझता हूँ कि अक़वामे मुत्तहिदा इसराइल के सामने बिल्कुल बेबस है और इसराइल की चीज ऐसे लगता है कि दुनिया में सिर्फ इसराइल ही का हुकूमत है। और मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि यूरोप इसराइल के यहूदियों पर होने वाले जुल्म के बाद अखलाकी तौर पर यहूदियों से बहुत ज़्यादा दबा हुआ है और हुकूमत है उनकी, दूसरे अल्फाज में खुफिया सी हुकूमत है उनके जहनों पर, लेकिन सबसे ज़्यादा हठधर्मी अमरीका की है जो इसराइल का इतना ज़्यादा हामी है कि कोई भी मसला हो, कोई भी मुद्दा उठा के देख लीजिए, वो इसराइल की इतनी ज़्यादा नाजायज़ हिमायत करता है कि इसराइल दुनिया का एक गुंडा और रोज स्टेट बन के आ बैठा है। और ये जो नेक्सस ऑफ ईवल है वो इसराइल और अमरीका और यूरोप का है जो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। और मैं ये समझता हूँ कि दुनिया के आलमी अमन को जितना ख़तरा इसराइल और अमेरिका की पॉलिसियों से है, मैं ये समझता हूँ कि किसी को भी नहीं है। और पिछले बेशुमार राय आमा के आदाद शुमार में अरब मुल्कों और यूरोप तक ने ये बात की है कि दुनिया के अमन के लिए सबसे बड़ा ख़तरा इसराइल है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका की खारजा पॉलिसी और यूरोपी मुल्कों की अनअबेटेड और बेपनाह सियासी और अखलाकी हिमायत ने इसराइल को दुनिया के किसी भी कानून को न मानने के लिए शेर बना दिया है, जंगल का शेर बना दिया है। लेकिन मैं समझता हूं कि उससे भी बड़ी बात यह है कि दुनिया भर की रायामा इसराइल को एक गासिब, आलमी अमन के लिए ख़तरा और इसराइल को एक नाजायज़ रियासत समझती है। और मैं ये समझता हूं कि यही सहयोनी हुकूमत का सबसे बड़ा अलमिया है।
जी बहुत शुक्रिया आपका, हम आपके शुक्रगुजार हैं। डॉक्टर साहब, हमारे पास वक्त सिर्फ 1.5 मिनट का बचा है। आप देखें कि गासिब इसराइली हुकूमत के पास 300 से ज़ायद वारहेड्स मौजूद हैं और वो किसी को अपने एटमी मराकज़ की मुआयने कारी की इजाज़त भी नहीं देती। दूसरी तरफ ईरान, जिसने NPT पर दस्तखत किए हैं, वो पुरअमन मकासद के लिए एटमी टेक्नोलॉजी हासिल करना चाहता है, कर रहा है, तो उस पर इस तरह से दबाव, और इसराइल से कोई पूछने के लिए तैयार नहीं, तो उससे कोई क्यों नहीं पूछता और ईरान पर इस तरह का दबाव क्यों? अगरचे सवाल थोड़ा तवील है लेकिन जवाब मुख्तसर चाहूँगा।
नहीं, देखिए, इसराइल की मौजूदगी जो है मशरक़ वस्ता में वो इस्तेमारी ताकतों के अजायम की तकमील की बुनियाद है। जाहिर है कि जब तक कि इसराइल की जो पुष्पनाही अमरीका की तरफ से हो रही है, वो पुष्पनाही अमरीका या यूरोप की तरफ से हो रही है, वो उसके पीछे एक बहुत ही खुला हुआ मकसद मौजूद है। वो मकसद यही है कि अमरीका के और यूरोप के मफादात का तहफ़ इसराइल वहाँ रह के कर रहा है और उसके लिए ज़रूरी है कि इसराइल को एक खौफनाक, एक बड़े बड़े अजदहा के शक्ल में, एक मॉन्स्टर के शक्ल में जो इसको वहाँ पेश किया जाए ताकि उसका खौफ दिलाया जाए। यही वजह कि इसराइल जो है, जहाँ तक न्यूक्लियर हथियारों का मामला है, इसमें ना तो उसकी पोजीशन अजीब व गरीब है, ना साफ छुपते हुए नहीं, सामने आते हुए नहीं वाली बात है, ना तो वो इनकार करता है कि हमारे पास हथियार मौजूद है, ना वो ये कहता है कि हमारे पास हथियार मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि वो ये अपना एक टेरर जो है उस पूरे खत्ते में कायम रखना चाहता है और यही अमेरिका का भी और यूरोप का भी मकसद है कि वो इसराइल को घेरना नहीं चाहते, इसराइल को पूरी आज़ादी देना चाहते हैं ताकि पूरे यानी अमन के लिए मशरक़ वस्ता के अंदर हमेशा खतरे की तलवार लटकती रहे और यहाँ पर खतरा बना रहे और उनके मफादात की तकमील होती रहे।
बहुत शुक्रिया आपका, वक्त हमारा बिल्कुल खत्म हो चुका है। हम आपसे इजाज़त चाहते हैं और दीगर मेहमानों से और अपने नाज़रीन से। नाज़रीन, आपने हमारे मेहमानों की गुफ्तगु सुनी। यकीनी तौर पर इस वक्त NPT या दीगर जो आलमी माहदे वो बड़ी ताकतों के हाथों के हरबे में तब्दील हो चुके हैं, वो उससे तो गलत इस्तेमाल करते ही करते हैं और दूसरे मुल्कों पर उसके ज़रिए दबाव डालने की कोशिश करते हैं। तो ज़रूरत इस बात की कि इस तरह के आलमी माहदों पर नज़रसानी हो और अगर नहीं तो कम से कम अक़वामे मुत्तहिदा की जिम्मेदारी बनती है कि उस पर पूरी तरह से और जामे तरीके से मुकम्मल तौर पर इन बड़ी ताकतों से भी पाबंदी करवाई जाए। प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।